के बीच के वहां भक्ति योग को जो विषय है जिसको भी बड़े विस्तार से है और ज्ञान योग को विषय भी जैसे प्रकरण है बहुत ही बढ़िया है और कर्म योग जगह जगह है ही। और तप को विषय भी आयो है केवल तब से भी ऐसा मनुष्य को कल्याण हो सका है। गीता की 17वें अध्याय में 14 के श्लोक से लेकर के 16 के श्लोक तक है शारीरिक तप और वाचक तप और मानसिक तप ये तीन भेद बताया है। तीनों निष्काम भाव से पालन किया जावे तो केवल तब से ही वो कल्याण हो जावे। तब को मतलब है कि धर्म पालन के द्वारा मन और इंद्रियों को तपाना, धर्म पालन के द्वारा जो कष्ट सहन करना पड़ता है वह एक तपस्या है और उससे थी सारे पाप ऐसो भस्म होकर के उनकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। शरीर के तप से, वाणी के तप से और मन के तप से, तीनों ही तपों से शरीर वाणी और मन के द्वारा जो जितने पाप है वे भी भस्म हो जाते हैं और पहले के जो दुर्गुण और दुराचार जो स्थित है वे भी नष्ट हो जाते हैं। सद्गुण सदाचार से संपन्न होकर के उसको परमात्मा की प्राप्ति अनायास हो जाती। सतोगुण जो है मुक्ति में सहायक है, रजोगुण और तमोगुण है ये बाधक है। इसलिए गीता में जहां कहीं रजोगुण और तमोगुण को जो विषय है वो तो त्याग की दृष्टि से भगवान ने वर्णन क्यों है और सतोगुण वो ग्रहण करने की दृष्टि से थी। तो शरीर संबंधी तप, वाणी संबंधी तप और मन संबंधी तप ये तीनों ही तप जो है गीता के मां एक विलक्षण रूप से भगवान ने बतलाए हैं तीनों प्रकार के तप। और हर एक माता बहनों को और भाइयों को सेवन करना चाहिए, ये व्यापक चीज है। स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, सुहागन स्त्री के लिए, विधवा के लिए, बालकों के लिए, सब के लिए ही ये अमृत के समान है। तो शरीर को जो तप है वो भी पांच प्रकार को, वाणी को तप भी पांच प्रकार को, मन को तप भी पांच प्रकार को। तीन ही लोग तो ऐसे है कि धारण करने के योग है। जैसे सोल में जाके वहां देवी संपदा के तीन ही लोग धारण करने के योग है, इसी प्रकार से थी ये 17वें अध्याय के बीच के वहां जो तीन प्रकार के तप है ये भी धारण करने के योग है। तो मैं शारीरिक तप की बात पहले कहता हूं। देव द्विज गुरु प्राग पूजन शौच मार्जनम्, ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरं तप उच्यते, को शब्दार्थ यो हो है, देवता द्विज माने ब्राह्मण और गुरु माने माता पिता और जो बड़े घर के माँ हैं वे गुरुजन जो किसी भी प्रकार से हमारे से बड़े हैं अवस्था में कायदे में अर्थात पद में या आचरण में जो बड़े हैं ये गुरुजन और प्राज्ञ माने ज्ञानवान इनका जो पूजन है एक बात तो ये एक तो ये प्रकार आपको बताया पूजन का मतलब है उनका आदर करना सत्कार करना और सोच माने बाहर की पवित्रता सोचाचार सदाचार और आर्जु माने सरलता और हिंसा किसी की आत्मा में तकलीफ न देना और ब्रह्मचर्य को पालना इस पांचों को शरीर संबंधी तब कहा गया है यह शब्दार्थ आपको बताया पांच बात क्या हुई फिर आपको याद कर लेनी चाहिए पूजने योग की पूजा और बाहर की पवित्रता यानी शरीर की पवित्रता सरलता और अहिंसा और ब्रह्मचर्य को पालन ये पांच को नाम शारीरिक तप है यानी शरीर संबंधी तप है तो अब फिर कुछ विस्तार से बतलाया जा रहा है पहली बात जो है देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम देवता ब्राह्मण गुरुजन और ज्ञानी इनका पूजन यानी आदर सत्कार देवता से विचार करना चाहिए कि देवता से कौन है कि आठ वसु ग्यारह रुद्र और बारह आदित्य और इंद्र और प्रजापति ये 33 देवता प्रधान है और भी जो सात लोग जो देवता है जैसे अश्विनी कुमार है विश्व देवा देवता है मरुदगण है इस प्रकार से खास खास जो देवताओं की मंडली है वे देवता उन देवताओं की जो भार्या है उनकी जो धर्मपत्नी वह देवियां तो देवी और देवताओं की एक प्रकार से पूजा आजकल जो एक प्रकार से शास्त्र में तो जिनको नाम नहीं है ऐसे ही लोग एक प्रकार से कल्पित देवताओं ने मान लिया वह देवताओं की बात नहीं है कल्पित देवता कौन जैसे समझो कि विभूतो सिद्ध है विभूतो सिद्ध भूगो जी हाँ बाबू जी जैसे आपने डोंग जी जोहार जी ये और पितर जो है और कई एक प्रकार से समझो कि क्षेत्रपाल भैरू जी महाराष्ट्र का भैरू तोड़ियासर का भैरू शीतला जी ये एक प्रकार से देवताओं की संज्ञा में नहीं है
जिनका नाम शास्त्र के में आया है उन्हें देवताओं के पूजन की बात यह कही है जिनसे ब्राह्मण क्षत्रिय से दिव्य जाति नहीं है क्योंकि पूजन की जो बात है सत्य और बल शब्द तो पूर्ण नहीं हुआ, इसलिए दिल संचेत या ब्रह्म को समझना चाहिए। तो देव दिव्य गुरु गुरु से थे जो अपने से बड़े हैं, माता है, पिता है, बड़ा भाई है, भाई है, और भी जो जितने अपने पद में बड़े हैं या गुरु में बड़े हैं, आसन में बड़े हैं, उन गुरुदेवों को समझना चाहिए। और प्राज्ञ से थी जो महात्मा है, जीव मुक्त ज्ञानी है, इनका पूजन यानी इनकी सेवा करना, इनका आदर करना, सत्कार करना, ये तप का, सार्विक तप का एक प्रकार है। अब दूसरा प्रकार बताया जाता है, दूसरी बात है सोच। सोच का दो भेद है, बाहर और भीतर। भीतर जो अंतःकरण की पवित्रता का जो विषय है वो आगे मानसिक तप के अंतर्गत है, इसलिए शारीरिक तप के मां बाहर का सोच है। सोच माने सोचाचार, सदाचार। सोचाचार उसको कहते हैं कि जब मृत्यु का आदि पदार्थों से शरीर की शुद्धि, सदाचार से थी उत्तम आसन, सबके साथ में अच्छा व्यवहार, ऐसा जो अच्छा व्यवहार है वो स्वार्थ के त्याग से होता है। इसलिए सबके साथ के बीच के बाद उत्तम व्यवहार करना, ये सदाचार है। और आचार से ही धर्म की उत्पत्ति होती है, ये बात महाभारत के अनुशासन पर्व के अंतर्गत विष्णु सहस्रनाम में आती है। सर्वागमानाम आचार्य प्रथमं परिकल्पते आचार्य प्रभो धर्मो धर्मस्य पर्वरच्युतः। सारे जो आगम जो है शास्त्र वेद, उनमें प्रथम आचार की कल्पना करी। आचार बने सोचाचार, सदाचार। और उस आचार से ती धर्म की उत्पत्ति होती है। तो धर्म का प्रभु जो सो अच्युत सो भगवान है। और हार व्यवहार जो है ये सब बाहर की ही पवित्रता के अंतर्गत है, किंतु पवित्र भोजन करने से अंतःकरण भी पवित्र हो जाता है। आहार शुद्ध और सत्व शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है, इसलिए पवित्र भोजन करना चाहिए। भोजन में तीन प्रकार की पवित्रता होती है, एक तो अर्थ शुद्धि, एक पदार्थ शुद्धि, और एक पदार्थ का एक प्रकार से साफ करना, ये भी पदार्थ शुद्धि है, और एक भाव शुद्धि। अर्थ शुद्धि से मतलब यह है कि न्याय से उपार्जन किए हुए द्रव्य से खरीदा हुआ भोजन यानी भोजन की सामग्री या अर्थ शुद्धि। और भाव शुद्धि से यह है कि श्रद्धा भक्ति पूर्वक बनाया जावे और दिया जावे, परोसा जावे।
भावशुद्धि। और पदार्थ शुद्धि वो है कि एक तो पदार्थ मूल से शुद्ध हो है, और मूल से शुद्ध जैसे लहसुन प्याज है ये मूल से अशुद्ध है, और स्वरूप से मूल से शुद्ध जैसे फल है, अन्न है, दूध है, शाक है, घी है, ये सब पदार्थ स्वरूप से ही शुद्ध है। और फिर इसको संस्कार कर करके शुद्ध कर लिया जावे, जैसे धो करके सुखा करके, इस प्रकार से थी जो भोजन पवित्रता से बनाया जावे, शुद्ध होकर के बनाया जावे, पवित्र भाव से बनाया जावे, तो वह भोजन ऐसा शुद्ध है, उससे थी अंतःकरण की शुद्धि होती है। है तो यह बाहर की शुद्धि, किंतु भीतर की शुद्धि में हेतु है, सहायक है। और आर्जो का मतलब सरलता, जो बात अपने हृदय में है वही वाणी में और वही व्यवहार के वहां, माने भीतर में तो कपट हो है और बाहर को व्यवहार सरल हो है, अच्छे हो है, वो नहीं। जैसो भाव भीतर को जैसो ही बाहर को, कोई पेचदार बात नहीं हो है, भीतर में समझो कि कपट नहीं हुए, भीतर को भाव भी शुद्ध हुए और बाहर को व्यवहार भी शुद्ध हुए, माने ये भाई तो बहुत ही सरल है। जैसे एक लकड़ी तो सीधी हो और एक बांकी हुए, तो सीधी या लकड़ी एक रूप से हुए तो मैंने सरल कहे, ऐसे ही आप जो व्यवहार है जिसको बहुत ही सरल कह जावे, इसके कोई मान गुमान नहीं है, आडो टेडो नहीं है, जो आदमी बहुत सरल है। सरल आदमी को जो व्यवहार है, और जो एक शरीर संबंधी तप है, और अहिंसा किसी प्राणी की कभी किंचित मात्र भी किसी निमित्त को लेकर के हिंसा करना, उसका जो अभाव है वो अहिंसा है। माने किसी देश में किसी काल में और किसी जाति की कभी कहीं किंचित मात्र भी हिंसा न करना, दुख न देना, उसका नाम अहिंसा। ऐसे ही सत्य वाणी के तब में आवेगा। पांचवा जो सो ब्रह्मचर्य का पालन, पुरुषों के लिए जैसे स्त्री का कभी नेत्रों से दर्शन नहीं करना, हाथ से छूना नहीं, एकांत वास नहीं करना, मैंने किसी भी प्रकार से थी चित्त में विकार होकर के ब्रह्मचर्य का खंडन हो जाता है, वही एक ब्रह्मचर्य का खंडन होना ही ब्रह्मचर्य के पालन के बीच के वहां कलंक है। तो सब प्रकार से थी वीर्य की रक्षा करना, सब प्रकार से थी निर्विकार होकर के रहना, स्त्री के दर्शन आदि से पुरुष के चित्त में विकार न हुए, पुरुष के दर्शन स्पर्श आदि से स्त्री के चित्त में विकार न हुए, वह ब्रह्मचर्य का पालन। आठ प्रकार के मैथुन के त्याग का नाम ब्रह्मचर्य का पालन है। आगे के तप के बीच के मां इसका प्रकरण आया नहीं है, इसलिए संपूर्णता से ब्रह्मचर्य का पालन इसे लेना चाहिए। अहिंसा का प्रकरण भी आगे नहीं है, इसलिए एक प्रकार से अहिंसा का सर्वथा पालन करना ही यहां अहिंसा पद से समझना चाहिए। तो शारीरिक तप के मैं ये पांच बात आई। एक तो ये कि देवता और ब्राह्मण और गुरुजन और ज्ञानी इनका आदर सत्कार। दूसरी बात आई यह कि शौचाचार और सदाचार रूप पवित्र। तीसरी बात आई सरलता की और चौथी सर्वथा हिंसा का अभाव और पांचवें आठ प्रकार के मेथुन का त्याग। ये शरीर संबंधी तप है, इस वास्ते इसको शारीरिक तप कहते। अब वाणी संबंधी तप कहा जाता है अनुद्वेग करं वाचं शत्रुं प्रियहितं चयात्। स्वाध्याया व्यसनं तैव वाङ्मयं तप उच्यते। ये वाणी संबंधित तप के भी पांच प्रकार है। किस प्रकार से वाणी बोलना चाहिए, अनुद्वेग करण वाक्यम, उद्वेग कारक वचन नहीं बोलना चाहिए और सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, हित का वचन बोलना चाहिए। और वाणी के द्वारा शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। ये पांच प्रकार वाणी के तप के बतलाए। इसका शब्दार्थ बतलाया, अब इसका भाव बतलाया जाता है। ऐसी वाणी कभी नहीं बोलनी चाहिए कि जिसको सुनकर के सुनने वाले के चित्त में उद्वेग हुए। दूसरी बात यह है कि सत्य वचन बोलना चाहिए। सत्य उसको कहते हैं जो बात जैसी सुनी, देखी और समझी उसके अनुसार ही वचन कहना, न तो अधिक करे और न कम करे। क्रोध के आवेश में आकर के मनुष्य एंड बेंड कह देता है तो सत्यबाजी को कभी क्रोध नहीं करना। और लोभ के वशीभूत होकर के भी मनुष्य जो है बड़ाई करता है तो अधिक बड़ाई कर देता है और निंदा करता है तो अधिक निंदा कर देता है। निंदा स्तुति से भी बचकर के रहना चाहिए सत्यवादी को, लोभ से भी बचकर रहना चाहिए।